इप्सिता हैरानी से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी। अभिमन्यु की माँ सीधे उनके हाल में आकर रुक गई। इप्सिता की मम्मी उनके पास गई और उन्हें अंदर की ओर ले आईं। तभी अभिमन्यु की माँ ने एक बड़ी सी थाल के ऊपर से लाल रंग का बड़ा शाही कपड़ा हटाया। उस थाल में कुछ जेवर थे, मेवे, और बीच में एक बहुत बड़ा सुनहरे रंग का बॉक्स था जिसके ऊपर इप्सिता और अभिमन्यु का नाम उभरे हुए अक्षरों में लिखा था। वो थाल सी इप्सिता हैरानी से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी। अभिमन्यु की माँ सीधे उनके हाल में आकर रुक गई। इप्सिता की मम्मी उनके पास गई और उन्हें अंदर की ओर ले आईं। तभी अभिमन्यु की माँ ने एक बड़ी सी थाल के ऊपर से लाल रंग का बड़ा शाही कपड़ा हटाया। उस थाल में कुछ जेवर थे, मेवे, और बीच में एक बहुत बड़ा सुनहरे रंग का बॉक्स था जिसके ऊपर इप्सिता और अभिमन्यु का नाम उभरे हुए अक्षरों में लिखा था। वो थाल सीधे उनके हाथ में पकड़ाते हुए बोली, सुहासिनी जी, ये लीजिए। हमारे यहाँ शादी का कार्ड सबसे पहले समधी जी को ही दिया जाता है, इसलिए हम यहाँ आपको अभिमन्यु और इप्सिता की शादी का कार्ड देने आए हैं। इप्सिता उनकी ये बात सुनकर चुपचाप अपनी मम्मी के पीछे आकर खड़ी हो गई। तभी रानी सा की नज़र इप्सिता पर पड़ी। उन्होंने आगे बढ़कर इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसे अपने बगल में बैठाते हुए कहा, कैसी हैं आप इप्सिता? इप्सिता ने धीमी आवाज़ में कहा, हम ठीक हैं आंटी। अभिमन्यु की माँ ने कहा, हम आपसे मिलना चाह रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि आज का दिन काफ़ी अच्छा है और आज हम आपसे मिलने आ ही गए। क्योंकि अब शादी में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है तो हमने सोचा क्यों ना अब आपको राजवंशी राज परिवार की बहू के नाम से ही बुलाया जाए। इप्सिता काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उनका ये सब बोलने का क्या मतलब है। तभी मासा ने एक अच्छा सा बॉक्स निकाला और उसमें से दो बड़े हैवी कंगन निकाले जिन पर डायमंड और कुंदन की नक्काशी के साथ बड़ी ही ऑथेंटिक सी डिज़ाइन बनी हुई थी। उसे देखकर इप्सिता काफ़ी हैरत में पड़ गई। मासा ने वो कंगन इप्सिता के हाथ में पहनाते हुए कहा, इप्सिता, अब आप राजमहल की होने वाली बहू हैं तो आपको अब राजमहल की सारी परंपराओं को मानना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। ये आपकी इस जर्नी की सबसे बड़ी शुरुआत है। इप्सिता उनकी बात सुनकर कुछ भी नहीं बोली और वो उस हैवी कंगन की ओर हैरानी से देखने लगी। अभिमन्यु की माँ ने इप्सिता के गालों को छुआ और उसकी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, हम आशा करते हैं कि आप राजवंश परिवार की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगी। इप्सिता ने उनकी ओर देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हम पूरी कोशिश करेंगी कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरें और हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। मासा ने इप्सिता के गाल को सहलाया। उन्होंने बड़ी ही प्राउडली कहा, अब हमें खुद पर बड़ा गर्व हो रहा है कि हमने आपको राजवंशी राज परिवार की बहू बनने के लिए चुना। इप्सिता उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई। नंदिनी वहीं इप्सिता के पीछे खड़ी थी। वो उसके हाथों में कंगन को देखकर अपने मन में बोली, इतने हैवी कंगन दिखने में तो सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इन्हें अगर मैं पहन लूं तो मेरे तो हाथ ही दर्द होने लगेंगे। सच में बेचारी इप्सिता, रॉयल फैमिली में होने के जितने फायदे मिलते हैं उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। कुछ देर इप्सिता की मम्मी पापा से बात करने के बाद मासा उठकर खड़ी हुई। उन्होंने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं। हमें राजमहल भी जल्दी पहुँचना है और वहाँ पर शादी के बहुत सारे काम देखने हैं। सुहासिनी जी ने अपना हाथ जोड़कर उन्हें विदा किया। नंदिनी इप्सिता के हाथ में पहने हुए कंगन देखकर बोली, यार ये तो काफी ज्यादा हैवी है, तेरी पसंद से काफी डिफरेंट भी। इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया। नंदिनी की ये बात इप्सिता की मम्मी ने सुन ली। वो नंदिनी को घूरते हुए देखकर बोली, वो राजमहल के शाही कंगन है, तुम्हारी पसंद और नापसंद मायने नहीं रखती। अब तुम्हें सारी जिम्मेदारियां निभानी है और राजमहल की महारानी की तरह पेश आना सीखो। अपनी मॉम की बात सुनकर इप्सिता ने धीरे से सिर हिला दिया और कुछ भी नहीं कहा। मासा के जाने का इंतजार करते करते काफी टाइम हो गया था। जब मासा वहां से बाहर गई तो 4 बज चुके थे। इप्सिता ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, 4 बज गए, यार हमें जल्दी चलना होगा वरना। इप्सिता बोल ही रही थी कि इससे पहले नंदिनी या उदय में से कोई उसकी बात का जवाब दे पाता, उसकी मम्मी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, आप इस समय कहीं नहीं जा सकती। अगर आपको कहीं जाना है तो आप कल चली जाइएगा। अब वैसे भी शाम हो गई है, शॉपिंग से आने में आपको रात हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि देर रात तक आप घर से बाहर रहें। इप्सिता ने जैसे ही उनकी बात सुनी उसने अपनी मम्मी पापा की ओर देखते हुए कहा, लेकिन मम्मी हम अकेले नहीं जा रहे हैं, उदय भाई हमारे साथ हैं। उदय भी उसकी बात सुनकर बोला, हाँ मॉम, मैं हूँ नायशी के साथ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। उदय बोल ही रहा था कि उदय के डैड ने कहा, उदय, तुम्हें कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमने कुछ सोच कर ये सब कह रहे होंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हमारी बात मानो। बेकार की बहस करके हमारा टाइम खराब मत करो। इप्सिता कुछ बोलने जा ही रही थी कि तभी नंदिनी ने इप्सिता का हाथ पकड़ा। उसने इप्सिता के मम्मी पापा की ओर देखते हुए कहा, इट्स ओके आंटी, हम कल चले जाएंगे। नंदिनी के इतना बोलते ही इप्सिता उसे हैरानी से देखने लगी। तभी इससे पहले कि इप्सिता नंदिनी से कुछ कह पाती, नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले आई। इप्सिता ने नंदिनी को घूरते हुए देखकर कहा, हम नीचे मम्मी पापा से बात कर रहे थे, तुम हमें इस तरह लेकर क्यों आई हो? कम से कम मेरी बात तो पूरी होने देती। नंदिनी ने इप्सिता को बेड पर आराम से बिठाते हुए कहा, मैं नहीं चाहती कि तेरे मॉम डैड किसी भी तरह से तुझ पर इस तरह के रोक टोक लगाएं और फिर तू उनसे बहस करे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो। इसलिए इप्सिता नंदिनी से कुछ कहने वाली थी कि नंदिनी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, अरे हमें शॉपिंग ही तो करना है, आज नहीं तो कल। कोई बात नहीं, हम कल शॉपिंग करने चलेंगे, ओके? नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओके। नंदिनी ने जैसे तैसे इप्सिता को समझा लिया। अगली सुबह इप्सिता नंदिनी के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी थी, तभी इप्सिता ने अपने मम्मी पापा की ओर देखते हुए काफी नाराजगी से कहा, मम्मी पापा आज तो हम शॉपिंग पर जा सकते हैं ना, या फिर आज भी आप लोग कोई बहाना बनाकर हमें रोकने वाले हैं? इप्सिता की मम्मी ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी, उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, इप्सिता ये आप क्या कह रही हैं? हम लोग भला आपको रोकने के लिए कोई बहाने क्यों बनाएंगे? ये क्या कोई तरीका है अपने पापा से बात करने का? नंदिनी भी इप्सिता की ओर देख रही थी। उसी वक्त इप्सिता ने कहा, तो बताइए कि आज हम शॉपिंग पर उदय भाई और नंदिनी के साथ जा सकते हैं? इप्सिता की मॉम उसे डांटने जा रही थी, तभी इप्सिता के पापा ने उसे परमिशन देते हुए कहा, हाँ बेटा बिल्कुल आप जा सकती हैं, हमें आपके शॉपिंग पर जाने से भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ब्रेकफास्ट करिए और उदय आप इन दोनों को लेकर जाइए। उदय ने उनकी बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाया। वे तीनों ब्रेकफास्ट करने के तुरंत बाद ही घर से बाहर निकल गए। उदय नंदिनी और इप्सिता के साथ सीधे मॉल के लिए निकला। वो कार ड्राइव कर रहा था, इप्सिता उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी और नंदिनी बैक सीट पर बैठी थी। उदयवीर बार बार नंदिनी को फ्रंट मिरर से देख रहा था। नंदिनी की नजर एक बार उदयवीर की नजरों से जा मिली। उदय ने जैसे ही नंदिनी को नोटिस किया, उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। नंदिनी को जैसे ही उदय ने देखा, वो तुरंत दूसरी ओर देखने लगा। नंदिनी को ये बात बड़ी ही ऑकवर्ड लगी, लेकिन उसने इप्सिता से बात करने के चक्कर में इस बात पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ी ही देर में वे तीनों मॉल पहुंचे। इप्सिता ने नंदिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये यहाँ का सबसे बेस्ट मॉल है, तुम्हें यहाँ पर हर तरह की ड्रेस मिल जाएगी, तुम जो चाहो वो खरीद सकती हो। नंदिनी ने इप्सिता की ये बात सुनी, वो सीधे लहंगे की दुकान में पहुंची। उसने काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहा, भैया मेरे लिए कोई अच्छा सा लहंगा दिखाइए। इप्सिता वहीं पर बैठी हुई थी, तभी उसने उदय और नंदिनी की ओर देखते हुए कहा, आप दोनों लहंगा पसंद करिए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। इप्सिता को वहाँ से बाहर जाते देखकर उदय ने पूछा, कहाँ जा रही है इप्सिता?
इप्सिता अपने भाई की बात का जवाब देते हुए बोली, भाई हम वॉशरूम से होकर आते हैं, आप यहीं पर रुकिए। जैसे ही इप्सिता ने ये बात कही, उदय ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इप्सिता वहाँ शॉप से बाहर निकल गई। इप्सिता वॉशरूम में थी तो नंदिनी अपने लिए ड्रेस और लहंगे सिलेक्ट करके उदय की ओर ही देती जा रही थी। नंदिनी ने येलो कलर का एक लहंगा उठाया जिस पर ग्रीन और रेड कलर के फ्लावर बने हुए थे। वो प्रिंट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। नंदिनी उस लहंगे को उठाकर सीधे मिरर के सामने जाकर खड़ी हुई। वो उस लहंगे को अपने ऊपर लगाकर देख रही थी कि वो लहंगा उस पर कैसा लगेगा। तभी नंदिनी की नज़र मिरर पर पड़ी। उदय जो वहीं उसके पीछे खड़ा हुआ था, वो मिरर में नजर आने लगा। नंदिनी ने उदय के फेस के एक्सप्रेशंस को नोटिस किया। फिर नंदिनी ने इशारे से उदय से पूछा, क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? उदय उसके लहंगे की ओर इशारा करते हुए बोला, ठीक है बट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और ये कलर भी नॉर्मल ही है। नंदिनी ने जैसे ही उदय की बात सुनी तो उसे भी वो उतना अच्छा नहीं लगा। उसने वो लहंगा वहीं वापस रखते हुए कहा, भैया मुझे कोई और कलर दिखाइए, ये कलर ज्यादा अच्छा नहीं है। जैसे ही नंदिनी ने उदय की बात समझ कर ये बात कही, उदय उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। तभी उस दुकान वाले ने नंदिनी को एक पिंक कलर का लहंगा दिया जिस पर ब्लैक कलर के फ्लावर प्रिंट बने हुए थे। ये लहंगा भी नंदिनी को बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन वो उदय से एक बार फिर पूछना चाहती थी, इसीलिए उसने डायरेक्टली उदय की ओर देखा। उदय ने अपने हाथों को दाएं बाएं हिलाते हुए कहा, दिस इज ओके बट ट्राई समथिंग एल्स। नंदिनी उदय की बात समझ गई। उसने सामने टंगे एक ब्लैक कलर के लहंगे को उठाया जिस पर सिल्वर कलर से बहुत ही हल्की डिजाइन बनी हुई थी। उसे देखकर नंदिनी ने कहा, भैया मुझे वो वाला लहंगा दिखाइए। जैसे ही नंदिनी ने वो लहंगा उठाया, उदय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने नंदिनी को अपना थम्स अप दिखाते हुए धीमी आवाज में कहा, दिस इज द बेस्ट। नंदिनी समझ गई कि उदय को ये लहंगा काफी पसंद आ गया है। उसने तुरंत ही उस लहंगे को सिलेक्ट कर लिया और उसे पैक करने को बोल दिया। उसके बाद नंदिनी अपने लिए कोई गाउन देख रही थी जिसे वो रिसेप्शन या फिर बाकी किसी और फंक्शन में पहन पाए। उसमें भी उसने उदय की वैसे ही हेल्प ली। उदय वहीं किनारे चुपचाप खड़ा उसे इशारों ही इशारों में सारी चीज बता रहा था और नंदिनी उसके इशारे को तुरंत ही समझ जा रही थी। नंदिनी ने भी नोटिस किया कि उदय की पसंद काफी अच्छी थी और जो कि नंदिनी को भी पसंद आ रहा था, और पता नहीं क्यों लेकिन उसे उदय के साथ शॉपिंग करके काफी अच्छा लगा और इस बीच उसने इप्सिता को एक बार भी मिस नहीं किया। वहीं दूसरी ओर इप्सिता वॉशरूम से बाहर निकली, तभी इप्सिता के सामने कुछ लोगों की भीड़ नजर आई। इप्सिता उस भीड़ की ओर देखते हुए बोली, ये यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है, क्या हो गया यहाँ पर, आई थिंक मुझे जाकर देखना चाहिए। इप्सिता सीधे उस भीड़ वाली जगह की ओर जाने लगी। इप्सिता उस जगह पर जैसे ही पहुंची तो उसने देखा किसी न्यू शॉप की ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी। वो कोई ज्वेलरी शॉप लग रही थी। इप्सिता ने देखा वहां पर एक सूट बूट पहनकर एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में कैंची थी और वो उससे दुकान के गेट पर लगे हुए रेड कलर के रिबन को काट रहा था। उसे वो आदमी काफी ज्यादा पहचाना सा लगा और इसीलिए वो वहां पर रुक गई। क्रमशः